पृष्ठ संख्या 144। लखनऊ के एक और प्रसिद्ध कवि सैयद जामिन अली जलाल हैं। वह हकीम असगर अली के पुत्र थे, जो रामपुर दरबार में कथा कहानी सुनाने पर नौकर थे। जलाल ने फारसी अरबी की शिक्षा प्राप्त करके लखनऊ ही में हकीमी आरंभ की। बालपन ही से कविताएं लिखते थे और नासिक के प्रसिद्ध शिष्य रश्क को अपनी कविताएं दिखाते थे। थोड़े ही समय में उन्होंने बड़ा यश प्राप्त कर लिया और उस्ताद माने जाने लगे। गदर के पश्चात नवाब यूसुफ अली खान ने उन्हें रामपुर में बुला लिया। जलाल के स्वभाव में उनकी बढ़ी हुई भावुकता ने उन्हें कई दफ़ा नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, पर नवाब ने प्रत्येक बार उनको बुलाकर फिर अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। इस तरह वह लगभग 20 वर्ष तक रामपुर में रहे और रामपुर दरबार के चार प्रसिद्ध कवियों में गिने जाने लगे, जिनमें से और तीन कवि राग, अमीर और तस्लीम थे। 1887 ईस्वी के लगभग रामपुर से चले आए और कुछ दिन मंगरौल में रहे। वहाँ से लौटकर फिर लखनऊ आए और सन 1900 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। जलाल 19वीं शताब्दी के अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं के चार संग्रह और कई शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं। वह काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के बहुत बड़े पंडित समझे जाते थे। इस बात पर उस समय के दूसरे कवियों और लेखकों से उनका वाद विवाद भी होता रहता था। उनमें अहम और आत्म प्रशंसा की भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि वह अपने सामने न किसी अन्य दूसरे कवि को कवि और न किसी दूसरे लेखक को लेखक समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा के संबंध में जो कुछ उन्होंने लिखा है वह सब ठीक ही है। उनकी काव्य रचना का कुछ भाग बड़ी उच्च कोटि की कविताओं में रखा जा सकता है। उनकी काव्य शैली लखनऊ के साधारण रंग से कुछ अलग थी। शब्दों और अलंकारों के साथ साथ वह भावनाओं के प्रस्तुत करने की चेष्टा भी करते थे। इसलिए कुछ आलोचकों का विचार है कि उन पर दिल्ली के कवियों का प्रभाव भी पड़ा था। उनके कुछ शेर उदाहरण के लिए दिए जाते हैं। एक कदम जाना जिधर दुश्वार था, शौक लेकर सैकड़ों मंजिल गया। तुम लाख छिपो हमसे मगर छिप नहीं सकते, जो दिल में है आँखों से निहां हो नहीं सकता। तेरे दर पर जो आ पड़े हैं उन्हें भूल कर याद घर नहीं आता। खुद चले आए ओ न जाए जो हम, सब्र ही तो मगर नहीं आता। पृष्ठ संख्या 145। आ मिलते जिसके ही ख्वाब में तुम, ख्वाब उसे रात भर नहीं आता। लखनऊ के कवियों का यह उल्लेख समाप्त करने से पहले अमानत का नाम लेना आवश्यक प्रतीत होता है। अमानत का नाम आगा हसन था, लेकिन वह प्रारंभ में केवल मर्सिये लिखते थे, लेकिन बाद में गजलें भी लिखने लगे। केवल 20 वर्ष की आयु में किसी रोग के कारण बोलने की शक्ति लुप्त हो गई थी। 10 वर्ष के बाद आप ही आप बोलने लगे, परंतु हकलाहट बाकी रही। धार्मिक लोगों का विश्वास है कि जब वह करबला यात्रा करने के लिए गए थे तो वहीं यह शक्ति उन्हें वापस मिली। वह 1858 ईस्वी में परलोकवासी हुए। अमानत की गजलों का संग्रह एक वासोक्त और कुछ मर्सिये प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु जिस पुस्तक ने उनको अमर बनाया वह इंद्रसभा नाटक है। अमानत की गजलों में शब्दों और अलंकारों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। वह अलंकारों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि कविता मात्र गोरख धंधा मालूम होने लगती है, परंतु इंद्रसभा अपना एक विशेष महत्व रखती है। यह उर्दू का पहला नाटक है जो 1852 ईस्वी के लगभग तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके बारे में बहुत से भ्रम फैल गए हैं जो आलोचनात्मक दृष्टि से किसी प्रकार की सच्चाई नहीं रखते। कहा जाता है कि वाजिद अली शाह के कहने पर अमानत ने यह नाटक लिखा और इसका मूल विचार उनको किसी फ्रांसीसी ओपेरा से मिला था। यह भी कहा जाता है कि यह कैसर बाग में खेला जाता था और वाजिद अली शाह स्वयं इसमें अभिनय करते थे। यह समस्त बातें भ्रांतिपूर्ण है, बल्कि सच यह है कि जिस समय अमानत की बोलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, अमानत के एक मित्र ने उनसे अनुरोध किया कि बैठे बैठे जी घबराता है। कोई ऐसा रहस्य तैयार करना चाहिए कि दो चार घड़ी जी बहले। अमानत ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और यह नाटक लिख डाला। उन्होंने इस नाटक के बारे में एक लेख गद्य में भी लिखा था जो मिल गया है और जिसके प्रकाशित हो जाने के बाद इस संबंध में उपजी सभी भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि इंदर सभा लखनऊ के उस विलासयुक्त वातावरण ही में जन्म पा सकती थी जो चारों ओर राग रंग से घिरा हुआ था। हिंदू मुसलमानों के मेल से यहाँ जो संस्कृति बन रही थी उसका परिणाम भी यही होना चाहिए था। इंदर सभा में हिंदुओं के देवता इंद्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जैसे वह कोई ईरानी या मुगल बादशाह हो। ईरान के देव राक्षसों का रूप धारण कर लेते हैं और अप्सराएं परियां बन जाती हैं जो मुसलमान महिलाओं का वस्त्र पहनकर मंच पर आती हैं। इंद्र सभा में गजलों के साथ साथ गीत और ठुमरियां भी हैं और उस नाटक का नायक गुलफाम अपने आहार व्यवहार और बातचीत में अवध का कोई पृष्ठ संख्या 146 शाहजादा जान पड़ता है। यथार्थवादी दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रकार की त्रुटि है, लेकिन जो कोई भी इस कलात्मक नाटक का अध्ययन करेगा उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वही है जो अवध में मिल सकती थी। इसकी भाषा इतनी सरल, गीत इतने मधुर और कथा इतनी रोचक है कि उस समय की जनता इसे देखकर सब कुछ भूल जाती थी। संगीत और नृत्य पर आधारित यह काव्य रचना एक विशेष ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व रखती है। इसको देखकर और बहुत सी सभाएं लिखी गईं, लेकिन कोई सभा इसकी लोकप्रियता को नहीं पहुंच पाई। इस नाटक में उसी परंपरा का दृश्य दृष्टिगोचर होता है जो नज़ीर की कविताओं, मीर हसन की मसनवी और इंसा की रचनाओं में मिलती हैं। रामपुर और हैदराबाद के दरबारों का उल्लेख भी संक्षिप्त में करना आवश्यक है क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के दरबारों के अंत होने के पश्चात अनेक कवि और लेखक इन्हीं दोनों केंद्रों से संबंधित रहे और वहाँ के वातावरण को बनाए रहे। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां का उपनाम नाजिम था। वह पहले मोमिन को और इसके बाद मिर्जा गालिब को अपनी कविताएं दिखाते थे। गालिब और नवाब में जो पत्र व्यवहार हुआ वह प्रकाशित हो चुका है। उसके अध्ययन से मालूम होता है कि वह कवियों और विद्वानों से कितना प्रेम रखते थे। उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और उस समय की काव्य रचना को देखते हुए उनका काव्य स्तर बहुत साधारण नहीं कहा जा सकता। उनके बेटे नवाब कल्बे अली खां भी एक अच्छे कवि और कवियों के आश्रयदाता थे। उनका युग रामपुर की उन्नति का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उस छोटे से राज्य में जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हो रही थी। वहाँ विभिन्न अन्य कलाओं के सर्वोत्तम ज्ञान मौजूद थे। सभी प्रसिद्ध कवि किसी न किसी प्रकार रामपुर से संबंध रखते थे। असीर, अमीर, जाक, जलाल, तस्लीम, मुनीर, कलक, जान साहब इत्यादि बड़े बड़े वेतन प्राप्त करते थे। नवाब कल्बे अली खान ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और कई पुस्तकों के लेखक थे। वह फारसी और उर्दू दोनों में निपुण थे और शब्दों के अर्थ और शुद्धता के बारे में विद्वानों से विचार विमर्श किया करते थे। उनके चार काव्य संग्रह छप चुके हैं और आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। ऊपर कहीं कहा जा चुका है कि रामपुर में दिल्ली और लखनऊ दोनों केंद्रों की शैलियाँ एक दूसरे में इस प्रकार से मिल गईं कि उनको अलग करना कठिन है। समय भी वह आ गया था कि उर्दू भाषा केंद्रों के बाहर निकलकर देश के सभी भागों में लोकप्रिय बन चुकी थी। इसलिए उर्दू साहित्य के इतिहास में रामपुर की सेवाएं सराहनीय हैं क्योंकि उसने भाषा संबंधी उस भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया जिसने दिल्ली और लखनऊ को दो अलग-अलग संप्रदायों में बांट रखा था। हैदराबाद का राज 18वीं शताब्दी के मध्य में उसी स्थान पर स्थापित हुआ था जहाँ एक सती पूर्व गोलकुंडा के बादशाह राज कर चुके थे। दूसरे अध्याय में वहाँ के पृष्ठ संख्या 147 साहित्यिक जीवन का चित्र दिया जा चुका है। बीच में कुछ समय के लिए वहाँ साहित्य का उत्सव कुछ मंद पड़ गया था। ऐसा लगता है कि साहित्य स्रोत सूखे नहीं थे और जब नया राज्य स्थापित हुआ तो उनकी आदि परंपराएं पुनर्जीवित हो उठी। वहाँ के शासकों ने भी कवियों और अन्य कलाकारों को अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए बुलाया। यह एक दिलचस्प बात है कि निजाम के अतिरिक्त उनके प्रधानमंत्रियों में भी कवियों के संरक्षण और आदर सत्कार में बड़ा योगदान दिया। महाराजा चंदूलाल शांदा स्वयं एक अच्छे कवि थे और उन्हीं के निमंत्रण पर कई कवि और लेखक हैदराबाद पहुँचे। उन्होंने जौक, नासिक और नज़ीर अकबरावादी को भी बुलाया था, लेकिन यह लोग हैदराबाद ना गए। शाह नसीर और दूसरे कवि वहाँ गए और उनका सम्मान हुआ। महाराजा के एक उर्दू और दो फारसी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहा जाता है कि उस समय लगभग 300 कवि हैदराबाद में एकत्र हो गए थे। इसी प्रकार राजा गिरधारी प्रसाद बाकी भी एक अच्छे कवि और कवियों के आश्रयदाता थे। उनकी बहुत सी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें अधिकतर फारसी में हैं। हैदराबाद के दूसरे कवियों में फैज, मायल, तौफीक और कैफी इत्यादि भी प्रसिद्ध हैं। पद्य की भांति गद्य में भी उन्नति हो रही थी। उसकी वास्तविक प्रगति का उल्लेख आधुनिक काल के लेखकों के संबंध में किया जाएगा, परंतु इस स्थान पर यह लिख देना आवश्यक है कि दिल्ली कॉलेज में उर्दू भाषा की बहुत अधिक चर्चा होने के कारण गद्य की ओर लेखकों की रुचि बढ़ रही थी। फारसी भाषा का गहरा प्रभाव होने पर भी उर्दू भाषा साहित्यिक रूप धारण कर चुकी थी। उस समय तक पढ़े लिखे लोगों में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पत्र व्यवहार फारसी में करना सभ्य होने का चिन्ह समझा जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में उर्दू में लिखे हुए पत्र भी मिलने लगते हैं। यह एक विचित्र बात है कि मिर्जा गालिब, जो उर्दू के महान कवि थे, एक बड़े पत्र लिखने वाले भी माने जाते हैं। गालिब की जीवन कथा का उल्लेख हो चुका है, यहाँ केवल उनके उर्दू गद्य के संबंध में कुछ संकेत किए जाएंगे। गालिब फारसी गद्य के एक महान लेखक थे, और यह भी सच है कि भारत में फारसी का ऐसा ज्ञान रखने वाले बहुत कम पैदा हुए हैं। परंतु गालिब को जब फारसी में पत्र व्यवहार का अवसर नहीं मिलता था तो उर्दू ही में लिखते थे। कुछ समय बीतने के बाद जब लोगों ने उनके उर्दू पत्रों की प्रशंसा की तो वह अपने अधिकतर मित्रों, शिष्यों और आश्रयदाताओं को उर्दू ही में लिखने लगे, और अंत में तो यह हो गया कि उन्होंने फारसी में पत्र व्यवहार लगभग छोड़ ही दिया। उनके पत्रों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ न कुछ पत्र अब भी मिलते ही जाते हैं। पत्रों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकों की भूमिकाएं और कुछ छोटी छोटी पुस्तकें भी उर्दू में लिखी हैं। इस प्रकार अब तक उनके उर्दू गद्य के जो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं वह यह हैं: उदय हिंदी, उर्दू ए, पृष्ठ संख्या 148, मुअल्ला दो भाग, मकावीते गालिब, खतूते गालिब, नादिर खतूते गालिब, नामा ए गालिब, लताइफ़े गैबी और तेगे तेज। अंतिम तीन पुस्तकें एक साहित्यिक वाद विवाद के संबंध में लिखी गई थीं, जिसमें उस समय के बहुत से लेखकों ने गालिब के विरुद्ध या उनके समर्थन में भाग लिया। किताबों की जो भूमिकाएं गालिब ने लिखी हैं वह अधिकतर उसी बनावटी शैली में हैं जिसमें उस समय की पुस्तकें लिखी जाती थीं। इनका कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि यह अधिकतर मित्रों के अनुरोध पर लिख दी जाती थी, जिनमें रीति अनुसार प्रशंसा के कुछ शब्द होते थे और बस। 1846 ईस्वी के लगभग गालिब ने उर्दू में पत्र लिखना आरंभ किया, और यही पत्र जो कलम उठाकर यूं ही लिख दिया जाया करते थे, आज उर्दू साहित्य का अनमोल रत्न बन गए हैं। उनके पत्रों की संख्या लगभग 1000 तक पहुंचती है। इनसे गालिब के संबंध में सभी बातें मालूम हो जाती हैं। समसामयिक इतिहास, राजनीतिक घटनाएं, साहित्यिक वाद विवाद सभी इनमें जगह पाती हैं। अपने जीवन की प्रत्येक बात उन्होंने दिल खोल कर इन पात्रों में बयान कर दी है। इनमें किसी की प्रशंसा है तो किसी की निंदा, और किसी से सहानुभूति दिखाई गई है, किसी से विरोध किया गया है, कहीं अहम ने दूसरों को पाताल में पहुंचा दिया है, और कहीं किसी की प्रशंसा में जमीन और आसमान मिला दिए गए हैं। कहीं गंभीर समस्याओं पर विचार प्रकट किए गए हैं, और कहीं किसी बड़ी बात को चुटकियों में उड़ा दिया गया है। किसी स्थान पर धर्म के गंभीर दार्शनिक तत्व बयान हुए हैं, और कहीं कट्टरपन का ठिठोला किया गया है। कहीं आशावादी बनकर जीवन के आनंद उठाने के स्वप्न हैं, और कहीं निराशा में मर जाने की इच्छा। इस प्रकार यह पत्र गालिब की आत्मकथा के साथ साथ बहुत से और विषयों को अपने घेरे में लिए हुए है। कोई आलोचक और लेखक जो इस समय के लोगों की मानसिक स्थिति को समझना चाहता है उसे गालिब के पत्रों से बहुत कुछ मिलेगा। गालिब एक क्रांतिकारी स्वभाव रखते थे। उन्होंने पत्र व्यवहार के उन सभी नियमों को तोड़ दिया जो मोहम्मद शाह के समय तक प्रचलित थे। वह अपने हृदय की बात पत्र के आरंभ ही से कहना शुरू कर देते थे और ऐसा जान पड़ता था कि वह जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे बातें कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मुझको मोहम्मद शाही ढंग पसंद नहीं, पत्र में तो दिल की बात लिखना चाहता हूँ। वह विशेषता जिसने उनके पत्रों को ऐसा रोचक और लोकप्रिय बना दिया है वह स्वभाव का विनोद भाव है जो एक रंग की तरह सारे पत्र पर फैली हुई मालूम पड़ती है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि यह पत्र उनकी गजलों की भांति महत्वपूर्ण है। इनकी नवीनता इस समय तक बनी हुई है और कोई लेखक अब तक पूर्णतया उनकी नकल नहीं कर सका है। पृष्ठ संख्या 149। गालिब पत्र व्यवहार के बड़े उत्सुक थे। उस समय डाक का प्रबंध अच्छा ना था और पत्र खो जाते थे, इसलिए वह बहुधा पत्र वैरंग लिखते और मंगाते थे। अपने यश का उन्हें इतना गर्व था कि अगर कोई पता पूछता था तो खफा हो जाते और लिखते कि केवल मेरा नाम और दिल्ली लिख देना काफ़ी है। यहाँ बादशाह से लेकर डाक के हर कार्य तक कौन ऐसा है जो गालिब को नहीं जानता। वह पत्र का उत्तर शीघ्र देते और चाहते कि उनके पत्रों का उत्तर भी इसी प्रकार दिया जाए। यह सारी बातें मिलजुल कर गालिब में एक प्रकार का व्यक्तित्व पैदा करती हैं जो उर्दू के किसी और लेखक को नसीब नहीं हुआ है। उसी युग में गालिब के एक नातेदार ख्वाजा अमान भी उर्दू गद्य के एक अच्छे लेखक हुए हैं। गालिब ने अपने पत्रों में उनका नाम बार बार लिया है और उनकी रचनाओं में मित्रों और शिष्यों को परिचित कराने की चेष्टा की है। ख्वाजा अमान ने फारसी की एक प्रसिद्ध कथा बोस्तान ख्याल का अनुवाद उर्दू में किया। यह फारसी कथा 10 भागों में थी। ख्वाजा अमान अलवर के महाराज सुदान सिंह के अनुरोध पर उसके 5 भागों का अनुवाद पूरा किया, लेकिन उनकी जिंदगी ने उनका साथ न दिया और यह काम अपूर्ण ही रह गया। उनकी भाषा सरल और मीठी है और ऐसा जान पड़ता है कि यह अनुवाद नहीं बल्कि ख्वाजा अमान की मौलिक कृति है। गालिब के दोस्तों में ख्वाजा गुलाम गौस वेखवर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो उन्नति करके गवर्नर के मीर मुंशी हो गए थे। उन्होंने 45 वर्ष की नौकरी करके 1885 ईस्वी में पेंशन ली और एक लंबी आयु पाकर 1905 ईस्वी में इलाहाबाद में मृत्यु पाई। वेखवर अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी फारसी कविताएं ईरानियों की दृष्टि से भी आदरणीय समझी जाती हैं। वह गालिब से आयु में छोटे थे परंतु गालिब उनका बड़ा आदर करते थे। कविताओं के अतिरिक्त उनके पत्रों और लेखों का संग्रह फुगाने वेखवर के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनके लिखने का ढंग प्राचीन लेखकों से मिलता जुलता है क्योंकि उन्होंने फारसी अरबी शब्दों के साथ साथ अलंकारों का प्रयोग भी बहुत किया है। वेखवर के ससुर मौलवी गुलाम इमाम शहीद भी गद्य के एक अच्छे लेखक माने जाते हैं और उनकी 2 पुस्तकें मौलूद शरीफ और इंशा ए बहारे बेखिजां प्रसिद्ध हैं। इस समय दक्षिण भारत में भी कई गद्य लिखने वाले मौजूद थे जिनमें शम्सुल उमरा का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दक्षिण में विज्ञान की कई पुस्तकें अनुवाद करके प्रकाशित की जो अब अप्राप्य हैं। इस अध्याय में जिन कवियों और लेखकों का वर्णन किया गया है उनमें से बहुत से रीति गति पर चलने वाले थे। इसी कारण से उनके उल्लेख में युग का बहुत ध्यान नहीं रखा गया है और 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक के ऐसे साहित्यकारों को सम्मिलित कर लिया गया है जिनको नया नहीं कहा जा सकता। पृष्ठ संख्या 150। जहाँ तक कविता का संबंध है वह अत्यंत लोकप्रिय थी। हिंदू मुसलमान सिख पारसी अंग्रेज और दूसरे यूरोपियन उर्दू में बड़े उत्साह से कविताएं लिखते थे। कई अंग्रेज कवियों के काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं पर जहाँ तक पद्य का संबंध है उसमें कोई महत्वपूर्ण गति नहीं हुई। यद्यपि गद्य में उस नए जीवन का आरंभ हो चुका था जो थोड़े ही समय में बड़ी उन्नति कर गया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा नवजागृति और विज्ञान के प्रभाव जब प्रबल गद्य में पूर्णतया प्रकट हो चुके थे, उस समय अधिकतर कवि पुराने मार्ग पर ही चल रहे थे। राजनीतिक और सामाजिक विषयों ने कविता में अपना स्थान नहीं बनाया था, बल्कि गद्य में उनके चिन्ह दिखाई देने लगे थे। प्रेस और प्रकाशन संस्थाओं के स्थापित हो जाने के कारण उर्दू साहित्य की प्रगति बड़े तीव्र गति में हो रही थी, और अगर कोई इसका चित्र देखना चाहे तो उसे गासा दत्तासी के व्याख्यान और लेख देखना चाहिए, जो पेरिस में बैठे हुए प्रत्येक वर्ष उर्दू की साहित्यिक प्रगति की रूपरेखा अपने महत्वपूर्ण लेखों और व्याख्यानों में दिया करते थे। इस संक्षिप्त पुस्तक में प्रगति का व्यापक चिन्ह देना असंभव है, तथापि इतना तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि इस समय उस महान युग का आरंभ हो चुका था जो भारत के नवजागरण का प्रतीक कहा जा सकता है। आगे के अध्यायों में साहित्य की उसी गति का विश्लेषण करने की चेष्टा की जाएगी जिसने नई चेतना को जन्म दिया था। इसका पूरा चित्र देने के लिए कहीं कहीं उन प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत किया जाएगा जो पुराने साहित्यिक दृष्टिकोण को अपनाने के कारण बदली हुई परिस्थिति का साथ नहीं दे रही थी।